بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نور الله مرقده آج ہم ان الفاظ سے ان کو یاد کر رہے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جب حضرت مولانا عبداللہ صاحب جامعہ فلاح دارین کے لیے مدرس تلاش کرنے کے لیے دیوبند تشریف لائے اور باب الزاہد 66 نمبر جو کمرہ ہے میں اس سال وہاں داخلہ لے چکا تھا پہلا سال تھا میرا یہاں سے فارغ ہو کر کے گیا تھا اور اگلے سال حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے دورے کی تکمیل کی تھی وہاں دارالعلوم دیوبند میں تو حضرت مولانا کے سامنے ہم تو کیونکہ گجراتی طلبا ہوتے تھے باتیں آئیں تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب ہی کے سلسلے میں سب نے باتیں کی کہ ان کو اگر تیار کر لیا جائے تو مناسب ہے مجھے وہ منظر یاد ہے مولانا کو اس کمرے میں بلایا گیا تھا حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے ان سے گفتگو کی تھی بات بھی طے ہوئی اور پھر یہاں تشریف لائے میرا تو اسی سال داخلہ ہوا تھا وہاں یہاں سے فارغ ہو کر گیا تھا میں دو سال وہاں پڑھا اس کے بعد یہاں حاضری ہوئی رابیل میں اور حضرت مولانا سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر ایک کو مختلف خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خوبیاں اور کمالات اپنے بندوں کو دیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے وہ بندے بھی اپنے معاشرے میں سماج میں اور جہاں جہاں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کام کر رہے ہیں اپنے ان کمالات کی وجہ سے ایک منفرد مقام پیدا کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک امتیازی شان عطا فرماتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کو واقعہ یہ ہے کہ جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ان کی ان خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے استفادے کا موقع عطا فرمایا ہم تو دور رہتے تھے کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی لیکن مجھے سب سے زیادہ جو خوبی ان کی اثر کر گئی وہی مزاج اور طبیعت کی نرمی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر ذرا سختی کا اظہار کیا تھا کچھ یہودی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے السلام علیکم کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ ذرا خباثت کی وجہ سے ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ لوگوں کو جلدی سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا شرارت کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی شرارت کو سمجھ گئی اور میں نے جواب میں کہا علیکم السلام واللعن تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ علیک بالرفق وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفَحْشَ پھر آگے فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا ظَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ वाकया ये जो लोग इंतजामी उमूर से ताल्लुक रखते हैं वो समझ सकते हैं कि नरमी के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाना ये हर आदमी का काम नहीं है। बहुत कम अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो इन इंतजामी उमूर को मिजाज की नरमी के साथ बहुत सुनो खूबी अंजाम दिया करते हैं। हज़रत हकीम इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज में जो नरमी थी, और मैंने मौलाना में देखा कि इंतजामी उमूर आपसे मुतालिक थे उसके बावजूद कभी सख्ती का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि हमारे मौलाना रशीद साहब जो हैं कभी कभी बतौर ज़राफ़त के उनके वाक़ियात नकल करते थे कि मौलाना को कहता सख्ती करो चारों तरफ से, जब मजबूर किया जाता तो अच्छा आज मैं सख्ती करता हूँ। तो बहरहाल मैं वो सुनता था तो बड़ा जो है उससे मुझे मैं महजूज होता था। तो मौलाना के मिजाज में अल्लाह ने ये जो सिफत अता फरमाई थी और उस पर अल्लाह ताला बहुत कुछ देते हैं, जिसे इन्ना रफीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़ व युअती अला रिफ़्क़ के माला युअती अला गैरिह, इस नरमी की वजह से अल्लाह ताला ने जो खूबियाँ और जो सिफात जो मरातिब अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे, और भी हजरत की बड़ी खूबियाँ थी। मैं तो कहा करता हूँ कि भाई देखो जब कहीं कोई बड़ा इजलास होता है बड़ा मौका होता है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जब लोग वहाँ शरीक होते हैं तो हर इदारे के किसी न किसी फर्द को मौका दिया जाता है उस वहाँ कुछ बात पेश करने का। तो जब तक हजरत मौलाना रहे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जामिया फलाहे दारैन की तरफ से उनकी जो नुमाइंदगी होती थी मदरसे की, वाकया ये है कि ये चीज़ पता नहीं दोबारा जामिया फलाहे दारैन को नसीब होती है या नहीं। वाकया ये है कि उस मजलिस और मौके के मुनासिब जो बातें होती थी हजरत मौलाना जो जिस अंदाज से उन बातों को पेश फरमाते थे ये भी उनका वो बड़ा एहसान जामिया फलाहे दारैन के साथ उनका वो बड़ा सिलसिला था जो मैं यूँ समझता हूँ पता नहीं ये कमी कभी पूरी हो सकेगी भी या नहीं। और भी हजरत की बड़ी खूबियाँ थी, ये एक दो तो मैंने इसलिए की कि ये वो मुमताज़ खूबियाँ हैं जिसको हर एक मानेगा और समझेगा और उसका मानना पड़ेगा। बहरहाल मौलाना की और भी उनकी शब बेदारी तलबा के साथ राफत और रहमत शफकत का मामला मुदरिसीन के साथ जो है बड़े अच्छे अंदाज में कोई कमी किया अगर उसकी पर तंबीह करनी हो तो वो जो उनका अंदाज, ये वो सारी खूबियाँ हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इस ज़माने में ऐसी खूबियाँ बहुत कम अशख़ास में पाई जाती हैं, और अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को अपनी इन खूबियों की वजह से गोया अहले इल्म में और अहले इंतज़ाम में एक इम्तियाजी मकाम अता फरमाया था, और उनके जाने से जामिया फलाहे दारैन को वाकईतन जो नुकसान हुआ है इस वक्त तो नज़र बर हालात ये कहा जा सकता है कि गोया वो नाकाबिल तलाफ़ी है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। हमें तो यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जामिया को महदत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का नेमल बदल अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात से ये कोई बईद नहीं है, लेकिन बहरहाल हजरत मौलाना की के इन खूबियों का हम एतराफ़ करते हुए हजरत के लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनकी इन दीनी खिदमात को कबूल फरमाए। ऐसे ज़माने में 44-45 साल एक इदारे में इसी तरह इस्तिकामत के साथ और इसी गोया पूरे सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारना, जबकि मदारिस में काम करने वाले खिदमात अंजाम देने वाले जो हजरात अहले इल्म जानते हैं कि कैसा उतार चढ़ाव होता है मदारिस के हालात में और उनके साथ किए जाने वाले मामलात में, लेकिन इन हालात में भी इतनी तवील ज़मान गया वो उनकी इल्मी खिदमात बस यहीं तक महदूद है। किसी और इदारे में मौलाना ने कोई काम किया बस फारिग होने के बाद यहाँ तो शिमला है यहीं वफ़ात, तो ये भी इस ज़माने के एतबार से वो खूबी है कि जिसको खसूसियत के साथ बयान करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, इसीलिए मैंने वो आयत भी इसी मुनासबत से पढ़ी थी। तो वाकया ये है कि उन्होंने पहले दिन जो एक मामला किया था उसको निभा कर के गए, और अल्लाह ने उनकी ज़ात से सिर्फ फलाहे दारैन ही को नहीं पूरे गुजरात को बहुत ज़्यादा बड़ा अजीम फ़ायदा अता फरमाया। उनके इल्मी फादात और उनके फ़ूज़ व बरकात जो है उससे सब हजरात को लोगों को अहले गुजरात को और यहाँ से फारिग होने वाले हमारे तलबा और उलमा को जो अल्लाह ताला ने फ़ायदा उठाने का मौका दिया, ये अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है। अल्लाह ताला हमें उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपनी रहमतों मग़फ़िरतों से हज़रत मौलाना को ढांप ले, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, और हमारे असलाफ़े किराम जिस तरह दीन की खिदमत को अंजाम देते हुए दुनिया से गए, अल्लाह ताला उसी ज़ुमरे में उसी जमात में उनको भी वह महशूर फरमाए, हमें भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए दीनी खिदमत की अंजाम दही की तौफीक व सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।